بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم علماء کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور ان تینوں مقاصد کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تین یا چار مقامات پر الگ الگ ترتیب سے اس کو بیان فرمایا، اور ان تمام کے ساتھ مشترک چیز اللہ نے اپنا احسان جتلایا. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوا تمہارے اوپر. اللہ has bestowed his favor upon you، بہت بڑا احسان. اور علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ یہاں لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، من ماضی کا صیغہ ہے، تاکید در تاکید در تاکید، انفسائز کیا اللہ رب العزت نے. تو اللہ رب العزت نے ایک احسان جتلایا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا. کیا احسان ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرمایا. افادہ اور استفادہ، بینیفٹ کرنے کے لیے اور بینیفٹ لینے کے لیے ہم جنسیت کا ہونا ضروری ہے، اکوالیٹی ہونا ضروری ہے، اکول ہونا ضروری ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان سے افادہ اور استفادہ اسی وقت حاصل کر سکتا ہے، بینیفٹ اسی وقت لے سکتا ہے جب ایک جنس ہو. اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو مبعوث فرما دے انسان کو، انسان کی ہدایت کے لیے، تو انسان اشکال کرتا کہ یہ تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ضروریات زندگی ہے، ہم ان سے کس طرح افادہ کریں، استفادہ کریں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجا. اور وہ زمانہ تھا زمانہ جاہلیت کا، اور اس زمانہ جاہلیت کے اندر جتنا ہم تصور کر سکتے اس سے کہیں زیادہ جہالت تھی، جس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض اذ اخرج يده لم يكد يراها، اندھیریا ہی اندھیریا، ڈارکنیس اپون ڈارکنیس، اندھیریا ہی اندھیریا، اتنی اندھیری کہ اگر انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تو اس زمانے میں اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور عربوں ہی میں سے مبعوث فرمایا، تاکہ چونکہ اولین مخاطبین عرب تھے تو عرب حضور کی بات سمجھ سکتے اور حضور کی بات اس کو ڈائجسٹ کرے، اس کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پوری انسانیت کو سمجھانا تھا. اس لیے اولین مخاطبین حضور کے عرب بنائے گئے. اشکال ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، ये हदीस की किताबें अरबी जबान में क्यों हैं, ये तो अल्लाह ताला उलमा किराम को जजाय खैर दे कि उन्होंने उसके तर्जमे हर जबान में कर दिए। कुरान करीम का तर्जमा, अहादीस का तर्जुमा, अभी दो दिन पहले मुझे यहाँ के आपके मकामी एक आलिम ने बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे, वो दो जिल्दों उनकी मुकम्मल हो चुकी इंग्लिश के अंदर। तो ये एहसान है इन उलमा का कि इस मुल्क में रहकर यहाँ के मकामी जबान के एतबार से आपको बात समझाते रहते हैं। इसीलिए मुझे याद आ रहे हमारे और आपके मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोद्रवी रहमतुल्लाहि अलैह वनवरल्लाहु मरकदहु, जब भी मैं हाजिर होता तो मैं हज़रत के पास ज़रूर जाता, यहाँ भी और जहाँ हज़रत होते। तो एक मरतबा यहाँ गया मौलाना इस्माइल साहब के यहाँ, तो हज़रत ने मुझे कहा कि मौली साहब, अल्लाह ताला का उसूल ये है कि उमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि अल्लाह ताला ने हर रसूल को अपनी कौम के ज़बान के साथ मबऊस फरमाया। तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ ऐसे उलमा पैदा करो जो उस मुल्क की ज़बान वहाँ वालों की फसाहत और बलागत से ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़बान बोले। तो मैंने इसको नोट किया और हमारे मुल्क के अंदर जाकर हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हमारी ज़बान के अंदर हम ऐसे साथी पैदा करें, जैसे यहाँ माशाल्लाह वहाँ इमरान साहब वगैरह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उलमा पैदा करें जो यहाँ के मकामी ज़बान बोले। तो जिनसियत का होना बहुत ज़रूरी है। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अरबों में इसीलिए मबऊस फरमाया कि मुखातबीन अव्वलीन अरब थे। इस बात फ़ीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम, अब हुज़ूर के मकासिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। सबसे पहले यतलू अलैहिम आयातिही, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतों को तिलावत फरमा देते। उमूमन लोग उसका तर्जुमा और मतलब यूँ समझते हैं कि तिलावत आयात से मतलब ये है कि बस कुरान पढ़ा देना, या ये कि मकतब के अंदर उमूमन जो तालीम होती है उसको उसके साथ लिंक कर दे। एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं जिन्होंने तफसीर लिखी है रूहुल मानी, तकरीबन 12 या 14 जिल्दों में। तो रूहुल मानी वालों ने तफसीर के अंदर हाशिए के अंदर ये बात लिखी है, और ये बात मैंने हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि से भी सुनी थी। लेकिन मैंने सोचा कि मौलाना इनाम साहब तो चूंकि तबलीग के ज़िम्मेदार है तो वो तो यही बात करेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़मून मिल गया रूहुल मानी में भी, और बाद में तायीद हो गई हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब अल आज़मी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और शेखुल हदीस है आज़ादवील के, उन्होंने ये बात फरमाई कि यतलू अलैहिम आयातिही का मतलब ये है, ये मतलब समझा है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी रखी थी कि जब दावत देते वक्त कुरान की आयतों को इस्तेमाल फरमाए। इसीलिए वो दाई जो दावत देते वक्त कुरान की आयत को इस्तेमाल करेगा उसकी दावत के अंदर ज्यादा तासीर होगी। यतलू अलैहिम आयाती, चुनांचे एक वाकया मिलता है अहादीस में, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा रुअसाए कुरैश ने एक आदमी भेजा, गालिबन वलीद को भेजा। उसने आकर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की, बहुत सारी पेशकश की। एक पेशकश तो ये की कि आप इस दावत के काम से क्या चाहते हो, इस दावत तालीम तस्किए से तुम्हारा मकसद क्या है। अगर तुम माल चाहते हो तो नजमा लक मालन फदकून अगना रजुल, हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा कर ले कि तू सबसे ज्यादा मालदार बन जावे। और अगर आप औरत और शादी करना चाहते हो तो कुरैश की 10 दोशीजा खूबसूरत औरतें जमा कर दे, उनमें से जिसको चाहो आप इख्तियार करो। और अगर आपके ऊपर कोई जिन वगैरह सवार है तो आप हमें बतलाओ, हमारे पास तबीब मौजूद है, वो आपकी इलाज करेंगे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम बातें सुन ली और फिर उनसे पूछा, अफरग तया अबुल वलीद, ए अबुल वलीद तो फारिग हो गया। तो वो कहा गया मैं फारिग हो गया। अब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू की, सूरह हामीम सजदा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया, हामीम तंजीरुल किताब पूरा पढ़ते गए। इब्ने कसीर में ये रिवायत है और कुर्तुबी में भी ये रिवायत है, और हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस्सहाबा में भी उसको तफसील से लिखा है कि वो बिल्कुल बेतवज्जुही से यूं पीछे बैठ के हाथ पीछे रखे हुए बातें सुन रहा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हुजूर यहां पहुंचे फइन अअरदु फकुल अंदरतुकुम साइकतम मिस्ल साइकत आदिम व समूद, कि अगर ये लोग एराज करे तो आप फरमा दीजिए कि मैं तुमको डराता हूं, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि तुम्हारे ऊपर वही हालात आएंगे जो आद और समूद के ऊपर आए थे। तो वो बैठ गया और हुजूर करीम सल्लम के मुंह के ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगा नशितु कर रहीम या मोहम्मद, नशितु कर रहीम या मोहम्मद, के मोहम्मद सल्लम मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं सिला रहमी का, आपके रिश्तेदार आप बद्दुआ ना कीजिए। वहां से उठ के चला गया। जब वापस गया अपने पिट्ठुओं के पास तो दूर से अबू जहल तार गया, कहने लगा कि ये वो नहीं है जो गया था, ऐसा लगता है नऊज बिल्ला, ऐसा लगता है कि मोहम्मद का जादू उस पर असर कर गया। तो उसने जाकर कहा कि क्या तू असबा था, तू दीन छोड़ चुका है? कहा कि नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ। तो क्या हुआ? कहा कि मैं शहर भी जानता हूँ, शहर भी जानता हूँ और कहानत वालों से भी मेरा ताल्लुक है, लेकिन वल्लाही लैसा हाज़ा बिशेरिन वला बिकहानतिन वला बिसहरिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है न सहर है न कहानत है न शहर है, बल्कि ये तो कलाम रब्बुल आलमीन है। असल बात क्या होती है? जो मद्दे मुकाबिल वाले, उस वो मद्दे मुकाबिल वाले वो भी आपकी बात को मान ले, ये असल बात होती है। तो उन्होंने मान लिया कि ये है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयतों को तिलावत फरमा देते। और दावत काफी नहीं है मेरे मोहतरम भाइयों, दावत के साथ तस्किया भी जरूरी है। हुजूर का मकसद है यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, तस्किया, तस्किया नफूस, हमारे दिल को पाक करना तमाम रज़ाइल से, हसद, कीना, तकब्बुर, हुब्बे माल, हुब्बे जाह, ये तमाम उम्मुल अमराज जो है। इसीलिए हज़रत शेख रहमतुल्लाह की किताब है उम्मुल अमराज, हमारे असातिज़ा हमें बतलाते रहते हैं कि हम जो दीन का काम करते हैं साल में कम से कम एक मरतबा हमें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि दिल के अंदर जो खोट पैदा हो जाती है। इसीलिए हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने बड़ों से सुना कि जब मेवात का सफ़र करते थे हज़रत, और मेवात का सफ़र करने के बाद, इसलिए कि मेवात उस ज़माने के अंदर मेवात में वो जहालत थी जो अरब के अंदर जहालत थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तो जब मेवात का सफ़र करते, मेवात का सफ़र करने के बाद हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल के अंदर, हालांकि कितने बड़े अल्लाह वाले थे और कितना अल्लाह ने उनसे काम लिया, लेकिन तस्किया और दावत का जोड़ है उसको समझाने के लिए हमें हज़रत फरमाया कर, हज़रत की आदत ये थी कि या तो हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, और जब हज़रत रायपुरी नहीं थे तो उसके बाद हज़रत शेख के पास सहारनपुर तशरीफ ले जाते और वहाँ एहतिकाफ़ कर दे, और जब ये हज़रत नहीं रहे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, मौलाना 10 दिन या कुछ अय्याम बस्ती निज़ामुद्दीन मरकज के अंदर एहतिकाफ़ फरमाया करते थे। तो दावत और तालीम और तस्किया तीनों का जोड़ है, कोई अलग अलग शोबे नहीं है। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, तस्किया मेरे मोहतरम भाइयों बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़ों ने हमें यूँ समझाया और हमें ये सिखाया कि जब तक इंसान का तस्किया ना हो उस वक्त तक उससे इफादा और इस्तेफादा मुमकिन नहीं होता। कल ही मैंने एक हदीस नकल की साथियों के सामने कि एक मरतबा हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बस्ती निज़ामुद्दीन में बैठकर जब हयातुस सहाबा का दर्स दे रहे थे तो एक हदीस आपके सामने आई, उसमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लयुअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुल फाजिर अल्लज़ी ला खलाक लहू फिद्दीन, के बाज़ मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन का काम ऐसे फाजिर फासिक शख्स से भी ले लेते हैं जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों तस्किया बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्लाह वालों के साथ हमारा ताल्लुक न हो, किसी बड़ों के जूतों को हम सही न करें, किसी से बैअत न करें, ये बैअत सुन्नत है और उसका इरशाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया है, और उसका असल उसूल सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैत ली है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की तारीफ फरमाई है और यूं फरमाया कि यदुल्लाह फौका अईदीहिम, कि जब बैत कर रहे इन्नमा युबा अल्लज़ीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह, कि वो सहाबा जो आपसे बैत करते हैं वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से बैत कर दे। इसलिए तसव्वुफ के अंदर जो सलासिल होते हैं चारों सलासिल, उसमें बैत जो ली जाती है उसमें सिलसिला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। और हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह का और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल यही था कि तसव्वुफ़ को कुरान और हदीस के ज़रिए से आपने साबित किया। इसीलिए तसव्वुफ़ के अंदर मुजद्दिद कहलाते हैं, जिस तरह दावत में मुजद्दिद मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, तसव्वुफ़ में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे बड़े हैं तसव्वुफ़ के अंदर। इसी तरीके से मेरे मोहतरम भाइयों, दावत और उसके साथ साथ तज़किया और हुजूर का मकसद था वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि हुजूर सहाबा को तालीम और हिकमत, हिकमत की तालीम दे देते और किताब की तालीम दे देते। हिकमत से मुराद मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अहादीस शरीफा, और किताब से मुराद कुरान करीम। याद रखना मेरे मोहतरम भाइयों, एक नया फितना शुरू हुआ है कि खुद कुरान समझ लो, बेशक कुरान तर्जुमा पढ़ो लेकिन किसी आलिम की सरपरस्ती में हमें पढ़ना है। इसलिए कि ये जो किताब और हिकमत है, कुरान और हदीस है, ये सीना बसीना मुंतकिल हुआ है, ये किताबों से मुंतकिल नहीं हुआ। किताबें तो बाद में लिखी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किताबें किताबत शुरू में मना कर दिया गया था। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो लिखते थे तो किसी ने उनको मना कर दिया कि मत लिखो। बाज़ मरतबा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं तो नाराज़गी की वजह से लिख लेते, नाराज़गी की वजह से कुछ फरमा देंगे, तो उस सहाबी ने लिखना छोड़ दिया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात, तू लिखता था अब नहीं लिख रहा है? तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने की वजह से उन्होंने इरशाद फरमाया कि अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि वल्लाही उक्तुब, अल्लाह की कसम लिख, इसलिए कि इस जबान से हक बात के अलावा कुछ और नहीं निकलेगी। तो किताबत हदीस वो तो बेशक शुरू से है, लेकिन किताबें बाद में उसको जमा किया गया। शुरू में तरीका ये था जो हुजूर करीम सल्लम के अव्वलीन तलबात है कि सीना बसीना चबूतरा था हुजूर करीम सल्लम की मस्जिद में उस सहाबा का जो वहीं पड़े रहते थे और हुजूर से तालीम और हिकमत और किताब और तस्किया और दावत सब हुजूर करीम सल्लम से हासिल करते थे। इसलिए आज का मेरा पैगाम ये है कि दावत तालीम तस्किया तीनों शोबों को हमें एक साथ मिलकर करना है, शेर और शकर होकर करना है, एक दूसरे का मुआविन बनना है। हम हमारे हज़रत जी मौलाना अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमें इस काम के अंदर न किसी की तनखीस करनी है, न किसी की तरदीद करनी है, न किसी की तनखीस करनी है, न किसी की तहकीर करनी है, न किसी की तजलील करनी है। सब काम हमारे है, दीन हमारा है, हम सबको लेकर चलेंगे, सब एक दूसरे के मुआविन बनेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन पूरे आलम के अंदर फैलेगा। उसके लिए मैं नियत करता हूँ, उम्मीद है कि सब नियत करेंगे इंशाल्लाह।